स्वभावादासुते पदनख विभायस्य सुफलम् जनः सेवी धन्यो भवति कृतपुण्यो न चिरतम् स्मरामि प्रातस्तम् भुवन महनीयम् नवनवम् अखण्डानन्दम् श्री गुरुवरमहम् ब्रह्म परमम् नारायणम् नमस्कृत्य नरम् चैव नरोत्तमम् देवीम् सरस्वतीम् व्यासम् ततो जय मुदीरये शङ्करम् शङ्कराचार्यम् केशवम् बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः हरिः ओम् नारायण 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 नारायण। अष्टावक्र जी महाराज ने जनक जी से कहा, अगर तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष के समान समझकर त्याग दो। जो निषिद्ध विषय हैं उनको तो स्वरूप से त्यागना पड़ता है, जो विहित विषय हैं उनमें छटनी करनी पड़ती है, क्योंकि विहितपना जो है वो बहुत सी चीजों पर निर्भर करता है, आपका वर्ण है, आपका आश्रम है, तो पाप तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर मुक्ति में वो बाधक हैं तो वो विहित होते हुए भी उनको छोड़ना पड़ता है। और छोड़ना तो अंत में उनको भी पड़ेगा जो मुक्ति में सहायक हैं, क्योंकि कर्म से तो मुक्ति होती नहीं है। लेकिन ये तो जब बात पक्की समझ में आ जाएगी तब की बात है। फिर ये तो त्यागने की बात हुई, अब भजने की बात क्या हुई, सेवन क्या करें, तो बोले पांच चीजों का सेवन करो। क्षमा, ये पांचों चीजों का जो रुझान है वो आत्मज्ञान की तरफ लगा करके इनकी व्याख्या करनी चाहिए। इसलिए क्षमा ना करें कि हम कमजोर हैं या हम ताकतवर हैं, क्षमा इसलिए कर दें कि जब एक ही परमात्मा है तो कौन किसका अपराध करता है। एरर होती है, कोई मिस्टेक नहीं होती है। ये अंग्रेजी के शब्द जो है कभी कभी बड़े अच्छे भाव दे जाते हैं। अरे भाई, चलते चलते जैसे सड़क पे होता है ना डाइवर्जन, रास्ता बंद है तो वहां पर लिखते हैं यूज डाइवर्जन। तो अब वो लिखा हुआ है तब तो वो एरर नहीं है, और अपने से ही के शॉर्टकट से चले जाए तो वो एरर है, वो कोई ऐसा अपराध नहीं है, पकड़े जाओगे तभी की बात है। क्षमा और आर्जव, ये सब दैवी संपत्ति में भी है, भक्ति के केस में भी है, गीता जी में सब दिए हुए हैं। यहां तो सिर्फ पांच नाम के लिए दे दिए हैं, इनसे संबंधित और भी जितने हैं वो सब अपने आप आ जाते हैं। ज्ञान के साधनों में क्षमा है, भक्त के लक्षणों में क्षमा है, और आर्जव ऋजुता ये दैवी संपत्ति में है, आर्जवम और दया ऋजुता माने बाहर भीतर एक से होना। ये व्यवहार जो है वो कपट सिखाता है, बिना कपट का कोई व्यवहार होता नहीं है। इसलिए जब व्यवहार में से के विषय में से आसक्ति निकल जाती है तो कपट अपने आप कम हो जाता है। तो ऋजुता जीवन में होनी चाहिए, जैसे हैं वैसे ही हैं भाई। दया, दया दान कृपा ये सब अलग अलग अर्थ में शब्दों का प्रयोग होता है। दया में सामने वाले में दैन्य समझ करके तब उस पर दया की जाती है। अरे सड़क पर पड़ा हुआ मर रहा है ठंड से, चले से कंबल दे लो, ये दया है। और कोई जिज्ञासु आया और आपने उससे पूछा भाई कैसे आए, उसने कहा महाराज आपसे एक गुत्थी सुलझानी है, तो अब आपको उसके ऊपर कृपा करनी पड़ेगी। ये मत देखिए कि वो उसका अधिकारी है या नहीं, कृपा जो है वो अधिकारी देख करके नहीं होती है। अनधिकारी पे तो दया होती है, और अधिकारी पर जो है अगर कृपा मतलब अधिकारी पर यदि कोई कृपा करता है तो उसमें कोई खास बात नहीं है, वो तो खींच लेगा, अपने आप ही खींच लेगा। तो भगवान कृपालु हैं, आप उनके सामने अपना को प्रस्तुत कीजिए, वो ये नहीं देखते हैं कि आपकी क्या जाति है, क्या वर्ण है, क्या अधिकार है। मांग तो मेरे से रहा है ना, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम। आर्त हो, अर्थार्थी हो, जिज्ञासु हो, कोई हो, ये सब उदार हैं, क्योंकि मेरे से ही तो मांगते हैं, मेरे पे कोई कमी तो है नहीं। नारायण तो कहते हैं कि दया दैन्य समझ करके नहीं, जब सब आत्मा ही है तो दो ना, दिया है तो दो, और नहीं लिया है तो न लेने की जरूरत है न देने की जरूरत। दया भूतेश्वलो लुप्तम मार्दवम ह्री रचापलम, ये दैवी संपत्ति में गिनाया है। और तोष संतोष, सम लगा दो तो संतोष हो जाता है, अर्थ तो दोनों का है तृप्त रहना। अब जो मोक्ष के मार्ग पर चलना चाहता है नारायण, उसे तो या तो ईश्वर के भरोसे चलना चाहिए, और अगर ईश्वर में जरा कम विश्वास हो तो प्रारब्ध के भरोसे चलना चाहिए, तो संतुष्ट रहता है। और अपने पुरुषार्थ के भरोसे पर जो चलते हैं वो तो कभी संतुष्ट रहते ही नहीं है, अरे हमारे पुरुषार्थ में कमी रह गई इसलिए अब फिर ज्यादा करेंगे, तो कभी उन्हें उस कर्म से मुक्ति मिलती नहीं है। तो संतोष माने प्रारब्ध से जो हमको प्राप्त है, लौकिक पदार्थ सब प्रारब्ध से ही प्राप्त होते हैं, सिद्धांत तो यही है। ये करेंसी नोट जो है ये भगवान के यहां नहीं छपते हैं तो वो प्रारब्ध से नहीं आते हैं, लेकिन प्रारब्ध से बस सुख दुख और मोह ये तीन चीजें प्राप्त होती हैं। और इधर शरीर में स्थूल शरीर में आयु जाति और भोग, तो ये तो आप प्रारब्ध समझ के संतुष्ट रहिए और परमात्मा के रास्ते पर चलते रहिए। पीयूषवत भज, एक सत्यम और रहेगा। सत्य का मतलब है बुद्धि को हमेशा सत्य की पक्षपाती रहनी चाहिए। वैसे होती तो है, स्वाभाविक ही सत्य की पक्षपाती नहीं होती है बुद्धि, लेकिन हम लोग उसे रहने नहीं देते, असत पक्ष में ले आते हैं। हाँ बात तो यही ठीक है, लेकिन अब लेकिन मैं सब अपना वो मंतव्य तो ये बुद्धि को सत्य के ही पक्ष में रखो, करने के लिए अभी नहीं कह रहा मैं, और करने के लिए वाणी को, महाराज श्री कहते हैं कि वाणी जो है बस ये सत्य के पक्ष में रहनी चाहिए। ये जरूरी थोड़ी है कि आप झूठ बोले, बोलो तो सच बोलो, नहीं तो चुप रहो, क्या जरूरत है बोलने की। सत्य बोलने से वाणी में जो शक्ति आती है और एक कॉन्फिडेंस आता है ना, वो और किसी तरह से नहीं आता। एक दफा झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है तो फिर बात बात में आदमी झूठ बोलता है, और एक झूठ को साधने के लिए फिर 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं, तो ये कुचक्र चालू हो जाता है। तो ये सब हैं तो प्रैक्टिकल बातें। अब इसमें नाम तो 5 के गिना दिए, लेकिन इससे समझ लेना चाहिए, आदि अपने आप लगा लो। इस जैसी जो भी चीजें हैं जो मोक्ष में सहायक हैं, उनको तो अमृत के समान समझकर सेवन करो, जैसे दवा सेवन करते हैं। और त्याग के लिए बात बताई दी। अब तीसरी बात जो है वो वेदांत की खास बात है, विद्धि, अपना ज्ञान आप ठीक कीजिए। यदि मोक्ष चाहते हैं तो अपनी जानकारी ठीक रखिए। अब आजकल बच्चों के एग्जाम में वो होते हैं ना जीके, और अब जनरल नॉलेज भी कोई नहीं बोलना चाहता काय का पर्चा जीके ना, हम तो पहले समझते ही नहीं थी क्या जीके आ गया भैया, बोले जी जनरल नॉलेज। अच्छा अच्छा, तो जनरल नॉलेज बोलो ना जीके। अब वो जीके में क्या याद करेंगे कि द ग्रेट फायर ऑफ लंदन कब हुई थी बताइए, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था ये बताइए। अब वो सब किताबों में रटते हैं लड़के, ये कोई जनरल नॉलेज है। और बोले तुम्हारे बाबा का क्या नाम है, क्या पता नहीं, तुम्हारे मोहल्ले में ऊपर कौन रहते हैं तुम्हारे, क्या पता नहीं। ग्रेट फायर ऑफ लंदन तो जीके में याद है लेकिन आपने आसपास पर्यावरण का कुछ पता ही नहीं है। तो नॉलेज जो है, ज्ञान, जानकारी इतनी ज्यादा भौतिक होती हो गई है कि उसमें आत्मज्ञान तो कहीं स्थान ही नहीं पाता बेचारा। तो अगर मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है तो आत्मज्ञान तो आपको बुद्धि में धारण करना पड़ेगा, इसमें कोई विकल्प नहीं है, ऑल्टरनेटिव नहीं है इसका कि हम इसकी जगह, अच्छा साहब इसकी जगह ये कर लें, अरे जगह नहीं है। यदि मुक्ति की इच्छा है तो आपको समझना पड़ेगा कि मैं कौन हूं, आखिर मुक्त तो मैं ही होऊंगा ना, कोई दूसरा तो नहीं हो जाएगा मेरी जगह पे, और मुझे अपना पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं। अगर मैं मुक्ति निकला तो सारी समस्या ही हल हो जाएगी ना। झूठ मूठ कोई बंधन में हुआ तो क्यों रो रहे थे फिर। और अगर वास्तव में बंधा हुआ निकला तो फिर उसका वास्तविक कोई उपाय भी होगा, ऐसा तो नहीं है कि मोक्ष वैसे ही लिख दिया शास्त्रकारों ने। तो अपनी समझ इस ये तीसरी कड़ी जो है ये विद्धि की है। न पृथ्वी न जलम न अग्निर् न वायुर्द्यौ न वा भवान् एषाम् साक्षिणमात्मानम् चिद्रूपम् विद्धि मुक्तये। मुक्तये मुक्ति के लिए विद्धि जानो। क्या जाने? आत्मानम विद्धि, अपने आत्मा को ही जानो, अपने आप को ही जानो। अपने आप को तो हम जानते ही हैं। वो स्वामी रामतीर्थ जब कहे अमेरिका तो टकरा गया एक सज्जन, तो पहले तो आग बबूला हुआ वो उनके कपड़ों को देख के, फिर बोले आपकी तारीफ, तो उसने कहा मैम सो एंड सो, मैं पूछ रहा हूं आपकी तारीफ, ये तो आपका नाम हुआ ना। अच्छा, आई एम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। बोले ये तो आपका काम हुआ, मैं तो आपका परिचय पूछ रहा हूं। बोले अच्छा, आप मेरे रेजिडेंस का पता चाहते हैं क्या? तो उन्होंने अपना कार्ड निकाल कर जो है उनको थमा दिया। बोले इसमें सब कुछ लिखा हुआ। बोले ये तो आपका घर है, मैं तो आपके बारे में पूछ रहा हूं कि आप कौन है। अब वो तो झल्ला गया वो, तो उसने कहा कि मैं इससे ज्यादा नहीं जानता हूं, आप ही बताइए फिर मैं कौन हूं। तो बोले शाम को प्रवचन में आना, वहां बताऊंगा। अब आया महाराज, अब तब असल में इंजीनियर था या जो भी था, लेकिन इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि उसने फिर उनका बहुत प्रचार किया स्वामी रामदेव। हम इसके अज्ञान में जिए चले जा रहे हैं। तो आत्मानम विद्धि, अपने आप को जानो, आखिर मैं हूं कौन। तो कोई वैज्ञानिक टकरा गए, बोले तुम, वो ऐसा है ना, हमने गॉड पार्टिकल निकाल लिया है। तो वो गॉड पार्टिकल से सारी सृष्टि बनी है, उसी पार्टिकल से तुम्हारा शरीर बना है, और इसमें जो केमिकलाइजेशन हुआ इससे तुम्हारी चेतना हो गई, ये मैं होने लगे, बस और कुछ थोड़ा ही है। जब ये जैसे बनी है उल्टी दिशा में जब इसका एक्शन चालू हो जाएगा तो मर जाओगे, सब बातें खत्म, ना आगे ना पीछे। चेतन को वो कोई स्वतंत्र सत्ता ही नहीं मानते, जड़ से चेतन पैदा हुआ है ऐसा वो लोग मानते हैं। तो बोले नहीं, चिद रूपम विद्धि, तुम किसी से पैदा नहीं हुए, तुम्हारा स्वरूप ही ज्ञान है, ऐसा जानो। अच्छा, ज्ञान का क्या काम है? बोले प्रकाश का क्या काम है? कि प्रकाश का काम है प्रकाश करना या प्रकाशित रहना। तो पंचदशिका देने का कूटस्थ द्वीप में बोले कहीं नाटक हो रहा था, खचाखच हॉल भरा हुआ था। अब पहले ये रोशनी हंडे की होती थी ना, तो हंडा रखा हुआ था, शो खत्म हो गया, सब लोग अपने घर चले गए, मंच खाली हो गया। अब वहां हंडा को उठाना भूल गए, अब वो हंडा सारी रात चलता रहा। अब वहां क्या कर रहा था वो हंडा? बोले पहले क्या कर रहा था कि पहले तो सबको प्रकाशित कर रहा था, और बोले बाद में क्या कर रहा था? बोले बाद में प्रकाशित हो रहा था। तो बोले ये होना और करना, बोले होना उसका स्वरूप है और जो उसके सामने आ जाता है वो प्रकाशित हो जाता है। प्रकाश में प्रकाशन की क्रिया नहीं है, अंधकार को प्रकाश मिटाता नहीं है, मिटाने की कोई क्रिया नहीं होती है। अंधकार आता है प्रकाश से लड़ने के लिए, खुद मिट जाता है। तो ऐसे ही ये आत्मदेव जो हैं, ये ज्ञान स्वरूप हैं। इनका काम है ज्ञान स्वरूप रहना, और इनके सामने कुछ आता है तो उसको ये जान लेते हैं बस। अरे ये आदमी बहुत अच्छा है, जहां ये हुआ ना कि ये आदमी बहुत अच्छा है, तो आप अपने स्वरूप से तो हट गए। आपका स्वरूप तो सिर्फ जानना मात्र है। अच्छा बुरा जो है ये ज्ञान का काम नहीं है, ये तो सब संस्कारों की माया है। एक ही आदमी कभी अच्छा हो जाता है, कभी बुरा हो जाता है। महर्षि तो बार बार बोलते थे ना कि निंदो मत, प्रशंसना का पड़ेगा, और प्रशंसो मत, निंदना पड़ेगा। उसी मुंह से निंदा स्तुति लोग करने लगते हैं। तो चिद रूपम विद्धि, आत्मानम विद्धि और साक्षिणम विद्धि, ये साक्षी है। ये बड़ा भ्रामक शब्द है ये साक्षी जो है, और वेदांत की हर क्लास में ये प्रारंभ भी यहीं से होता है। तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर के साक्षी हो, स्थूल शरीर के साक्षी हो, सूक्ष्म शरीर के साक्षी हो, नारायण कारण शरीर के साक्षी हो, तुम ज्ञाता नहीं हो साक्षी हो, प्रमाता नहीं हो साक्षी हो। तो साक्षी शब्द का अर्थ होता है साक्षात पश्यति इति साक्षी, जो बिना किसी की सहायता के जानता है उसको तो बोलते हैं साक्षी, और जो किसी की सहायता से जानता है, जैसे आत्मा तो है शरीर में लेकिन वो रूप को बिना आंख के नहीं जान सकता, यद्यपि रूप निकलता परमात्मा से ही है, आत्मा से ही है, लेकिन उसको दृश्य नहीं बना सकता जब तक कि उसके पास आंख ना हो। इसलिए आंख से देखने वाला जो है वो साक्षी होते हुए भी साक्षी का शुद्ध स्वरूप नहीं है। आंख के दृश्यों को, आंख को और आंख वाले को, इन तीनों को जो जानता है और सिर्फ जानता ही है उसको कहते हैं साक्षी। और कौन जानता है? मैं ही तो जानता हूं। अच्छा, मरने से हमें डर क्यों लगता है? बोले ये सब कुछ जानेंगे नहीं हम, अभी तो हम सब जान रहे हैं और फिर कुछ जान ही नहीं पाएंगे, माने हम ही नहीं रहेंगे, ये मतलब है ना। जानने वाले जो हम हैं वो ही नहीं रहेंगे, बस यही डर है, बेहोश होने से डर लगता है। کہ کچھ جان نہیں پائیں گے. تو یدی انیہ کو جاننا ہے تو آپ کو یانتر چاہیے. وہ ساکشی جو ہے وہ سیدھا انیہ کو پرکاشت نہیں کرتا, کیونکہ ساکشی میں سوائے ساکشی کے کچھ ہے ہی نہیں, پرکاش میں پرکاش کے علاوہ کچھ اور ہے ہی نہیں. پرکاش یدی جانے گا تو ہی کہے گا کیا جانتے ہو کہ پرکاش ہے, کس کو جانتے, پرکاش کو جانتا ہوں بس. اور اگر آپ کچھ پرکاش سے بھن کچھ بھی آپ استھاپنا کرتے ہو تو پھر کوئی نہ کوئی یانتر چاہیے آپ کو, شبد کے لیے کان چاہیے, اسپرش کے لیے توچا چاہیے. بھاگوت میں بڑا سندر اس کا ورنن کیا, بولے یہ اندریاں بنی کیسے ہیں, آپ میں دیکھنے کی اچھا ہوئی اس لیے آنکھ بنی, آنکھ ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں, ایسے نہیں ہے. آپ کو دیکھنے کی اچھا ہوئی بس اس اچھا سے ہی پنچبھوتوں میں یہ آنکھ بن گئی نا. رامکرشن پرمہنس دیو جو تھے نا وہ آنکھ دیکھ کے پتا چلا لیتے تھے کہ یہ یوگی ہے کہ بھوگی ہے. بولے یوگی کی آنکھیں کمل کے پتے کی طرح سے کھلی رہتی. ویسے آج کل تو بھوگیوں کی زیادہ کھلی رہتی ہیں کیونکہ ہیریڈیٹی سے چلتی ہیں یہ سب چیزیں, ماں باپ سندر ہیں تو بچے بھی سندر ہو جاتے ہیں. لیکن شاستر کی بات تو ایسی ہے, کھلی ہوئی میں بھی آنکھ اگر اندر سے دیکھو نا تو اس کے ڈورے ہیں, اس میں پانی ہے, اس کی پتلی کے موومنٹس ہیں. جو یوگی کی آنکھ ہے وہ زیادہ موومنٹ نہیں کرتی ہے, استھر رہتی ہے. اور کوے کی آنکھ تو کبھی استھر ہی نہیں رہتی. جس کا من زیادہ چنچل ہوگا, جو زیادہ چیزوں کو دیکھنا چاہتا ہوگا, بھوگنا چاہتا ہوگا, اس کی آنکھیں چنچل رہیں. ایسے ہر انگ کے بارے میں ہے. تو بھاگوت کے دوسرے اسکند میں ہے, آپ کو دیکھنے کی اچھا ہوئی اس لیے نیتر بن گئے, سننے کی اچھا ہوئی اس لیے کان بن گئے. کوئی کم سن پاتا ہے, کوئی زیادہ سن پاتا ہے, یہ کرم پھل ہے رہا ہے. اچھا تو ہے آپ بہت سنیں, لیکن کوئی پاپ کرم ایسا ہے کہ آپ کی کرن اندری بندھ گئی, وہ زیادہ نہیں سن پاتے. تو جو ساکشی ہے اس کو پکڑنا ہے, دیکھنے والا آنکھ والا نہیں ہے, سننے والا کان والا نہیں ہے. یہ کینوپنشد کا مول وشے یہی ہے کہ آخر یہ ہے کون جو کان کے پیچھے بیٹھ کے سن رہا ہے, آنکھ کے پیچھے بیٹھ کے دیکھ رہا ہے, کہاں کہاں سے کرنیں آ رہی ہیں, کون کیا سورس کیا ہے. تو پہلے آئیڈیاز کو فکس کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ایک ساکشی نام کی وستو ہے اور وہ صرف چن ماتر ہے, گیان ماتر ہے, اس میں اور کچھ نہیں. تو بولے ہے نا, کوئی چیز تو ہے کہ ہاں ہے تو ست تو ہو ہی گئی, وہ ہے اس لیے وہ ست ہے, اور پرکاش روپ ہے, گیان سوروپ ہے, اس لیے چت روپ ہے. تو ساکشی سچت تو ہو ہی گیا نا. بولے پکا. اب یہ ساکشی میں ہوں ایسا جانو. اچھا سامنے سمندر کون دیکھ رہا ہے, बोले मैं देख रहा हूं। कौन देख रहा है? मैं कौन? आंख वाला। और अंधा क्या कहेगा? मुझे, मैं नहीं देख रहा हूं। ये कौन बोल रहा है? नहीं, अंधा तो है। हाँ, मैं ही बोल रहा हूं ना, तो आंख को लेकर के कहता हूं कि मैं देख रहा हूं, और आंख के ना होने को लेकर के कहता हूं कि मैं नहीं देख रहा हूं। और ऑब्जेक्ट जो है, विषय जो है, वो एक ही है, समुद्र। तो हुआ करो नारायण, एक हो विषय अनेक हो, इंद्रियां एक हो अनेक हो, लेकिन वो जो एक सब इंद्रियों के पीछे, सब ज्ञानों के पीछे है, वो एक साक्षी मैं हूं। अच्छा, सूर्य को कौन देख रहा है? बोले मैं। पृथ्वी को कौन देख रहा है? मैं। समुद्र को कौन देख रहा है? मैं। वायु को कौन देख रहा है? मैं। तो आप समुद्र देखते हो तो क्या मैं समुद्र हूं, ये हो जाते हो? सूर्य को देखने से क्या मैं सूर्य हूं, ऐसा हो जाते हो? देखने वाला जो है वो तटस्थ ही रह जाता है। इसलिए साक्षी तटस्थ साक्षी ही रहता है। वो किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होता, घुलता मिलता नहीं है। और ये आंख वाला जो है, ये तो घुलता मिलता है। एक दिल फेंक लोग जो होते हैं ना, वो चाहे जिस रूप के पीछे चल देते हैं ना, लेकिन साक्षी नहीं चलता। साक्षी तो उस चलते हुए को भी जानता है। एक वो खलील जिब्रान हुआ है, नाम सबने सुना होगा, तो उसका एक एनेक्डोट आया था टीवी पे, पुरानी, पहले देखते थे, अब तो देखते नहीं। तो उसमें एक बहुत अच्छी बात थी। तो वो गधे पर सवार होकर जा रहा था, और सामने कोई आदमी आया, टकरा गया, तो उसको गुस्सा आ गया। उसने उसको मारने के लिए हाथ उठाया। अब हाथ, वो तो टीवी थी नारायण, तो वो हाथ उठा, जैसे जैसे हाथ उठाया तो वो दर्शाया गया उसमें कि हाथ उठ रहा है। उठते उठते वो उसकी तरफ देखता जा रहा है। जब यहां आ गया और थप्पड़ मारने के लिए जब नीचे आने लगा, बोले रुको खलील मियां, तुमको गुस्सा आ रहा है? गुस्सा तो नहीं आना चाहिए। अब ये कौन बोल रहा है भैया? ये जो खलील मियां से अपने को भिन्न जान रहा है वो बोल रहा है। तो कर्ता, भोक्ता, प्रमाता, इन तीनों का जो साक्षी है वो इन तीनों से भिन्न है। जब आप अपने को उस कक्षा में रखेंगे तब आप ही अपने पूरे सारे शरीर के नियंत्रक हो जाएंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि चाहे जो कुछ आपके शरीर में हो जाए और आपको पता न लगे। पता तो लगता है, लेकिन हम तटस्थ नहीं हो पाते, उसके साथ एक हो जाते। हाँ, बोले मारा कुछ बात नहीं, ये काम साक्षी का नहीं है। अब इस पर एक महात्मा ने जो है हंसी की भी बात सुनाई। उन्होंने सुनाई कि कोई सज्जन गए वेदांत के लेक्चर में, तो सुनिया है कि हाँ मैं साक्षी हूं। अब घर में आकर सो गए रात को, तो चोर आ गए घर में। अब खटपट शुरू हुई तो श्रीमती जी ने कहा कि अरे सुनते हो घर में चोर आ गए सर। बोले चुप रहो, सुन मैं भी रहा हूं, मैं साक्षी हूं। अरे बोले अलमारी खोल ली उसने? कि हां खोल ली, मुझे मालूम है, मैं साक्षी हूं। माल ले गए सब चोर और वो साक्षी बने हुए पड़े रहे ना। तो अब इसमें खामी क्या है? गलती कोई नहीं है, साक्षी कुछ करेगा थोड़ी, लेकिन साक्षी भी है और मैं गृहस्थ भी हूं। ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं ना, इसीलिए अभी महाराज से बोल रहे थे ना टेप पर कि व्यावहारिक सत्ता को गड़बड़ मत करो। व्यावहारिक सत्ता माने यही कर्ता भोक्ता प्रमाता, इसे शास्त्र के फ्रेमवर्क में सही रखिए। और जो साक्षी है ये परमार्थ वस्तु है, ये वास्तविकता है, इस वास्तविकता को पहचानिए और इसमें अपने आप को बिठाइए। तो क्या दोनों साइमल्टेनियसली चल सकते हैं? मैं साक्षी भी बना रहा हूं और मैं कर्ता भोक्ता प्रमाता भी बना रहा हूं। बोले प्रमाता तो बने रह सकते हो, क्योंकि वो इंद्रिय सापेक्ष है, इंद्रियां अपने अपने काम करती रहती हैं। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः क्या है तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। मैं तो कुछ करता ही नहीं हूं, वो ठीक है, प्रमाता तो बने रह सकते हो। अच्छा भोक्ता बने रह सकते हो कि नहीं? भोक्ता का अर्थ बदल जाएगा। शंकराचार्य भगवान ने लिखा भोक्तृत्वम नाम उपलब्धित्वम। ये भोक्तापना क्या है? कि जानना यही भोग है बस। ऐसे भोक्ता तो हो सकते हो, और भोक्ता का मतलब यह है कि खूब चटकारे ले लेके खाओ और विषयों का सेवन करो, तो वो तो नहीं रह सकते, वो तो पहले ही आ गया विषयान विषवत्य जग। और कर्ता बने रह सकते हो कि नहीं? तो बोले कर्ता भी, नियोज्य कर्ता भी नहीं रह सकता जो अपने को साक्षी जानेगा। नियोज्य कर्ता माने ईश्वर कराता है और मैं करता हूं, ऐसा भी नहीं रह सकता। ये भक्ति के क्षेत्र की तो बात ठीक है कि भगवान कराने वाला है और मैं करता हूं, लेकिन ज्ञानी के लिए क्या लिखा गीता में? नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन न कार्यन, न वो करता है न वो कराता है। तो श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने अपने व्याख्या में इसके लिए लिखा कि न वो करता है क्योंकि वो जीव नहीं है, न वो कराता है क्योंकि वो ईश्वर नहीं है। जहां जीव और ईश्वर का द्वैत है वहां तो कोई कराता है और कोई करता है, और जहां अद्वैत है वहां न कोई करता है न कराता है। तो खेल तो ये सब चलता रहेगा, क्योंकि ये तो संसार में हमेशा जीव बने रहेंगे और इसलिए ईश्वर भी हमेशा उनका शासन करता रहेगा। आप तो खेल को देख सकते हो, बस इतना कर सकते हो, मजा लो खेल का। तमाशा देखने वालों तमाशा खुद न बन जाना। आप तो टिकट के पैसे दो और तमाशा दे, टिकट के पैसे दे चुके क्योंकि शरीर प्राप्त हो गया, यही फीस है इसकी। अब दुनिया का खेल देखो, न मैं करता हूं, और जो करता है सो करता है, जो कराता है सो कराता है, डायरेक्टर भी है एक्टर भी है। तो न पृथ्वी न जलम नाग्निर न वायुर्द्यौ न वा भवान, न तो पृथ्वी हूं न जल हूं न अग्नि हूं न वायु हूं न आकाश हूं, भगवान तुम नहीं हो, ये तुम फिर कौन हो कि ये शाम साक्षिणम, इन सब के तुम साक्षी हो। आत्मानम चिद्रूपम विद्धि, ये साक्षी ही में मेरा आत्मस्वरूप है और इस साक्षी का स्वरूप है चिन्मात्र, कभी इसमें से ज्ञान अलग होता नहीं है। अच्छा, मान लो कोई अपने कर्मवश नरक में चला गया तो उसे ये मालूम पड़ेगा कि नहीं कि मैं नरक में हूं? अगर मालूम पड़ रहा है उसे कि मैं नरक में हूं तो ज्ञान तो उसका बना हुआ है ना। मैं स्वर्ग में हूं, ज्ञान बना हुआ है। मैं मुक्त हूं तो ज्ञान मुक्त हुआ क्या? जहां बंधन की कल्पना थी वहां मुक्ति की कल्पना के साक्षी हो गए। एक्चुअली अभी तो हमको यही नहीं मालूम है कि बंधन क्या है। हम तो बंधन को ही मुक्ति समझ रहे हैं ना। एक माँ ग्वालियर में आजकल ये होते हैं ना, जहां शादी ब्याह होते हैं, गार्डन उस पर बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है बंधन गार्डन। शादियां होती हैं उसमें, प्रणय बंधन में बंध गए। अब देखो कितना प्यारा शब्द मालूम पड़ता है लेकिन ये नहीं देखते कि उसमें बंधन भी तो लिख रहा है भाई, प्रणय बंधन में बंध गए। और सारी जिंदगी उस बंधन को ढोते हैं ना। लेकिन आप यदि आत्मा हो तो आप तब भी मुक्त हो जब आप प्रणय बंधन में हो। उस बंधन को त्याग करके आप मुक्त होगे, इस भ्रम में मत रहना। वो बात तो अलग है कि एक स्टेज होती है हर चीज की। आजकल तो क्या 21 बरस है शायद शादी की उम्र लड़के की, तो 21 बरस से पहले बंधन में नहीं बन सकता तो पहले तो बहुत जल्दी बंध जाते थे तो अब बंधन कम हो गया है। सारी समस्या इस देह को लेकर के ही है। क्या समस्या है इसमें देह को लेकर के? इस देह में जो पूर्वकृत कर्मों का फल उदय हो रहा है, सुख दुख और मोह, ये तीन चीजें इसमें आ रही हैं। कितना भी फूंक फूंक के पैर रखो नारायण, चले नहीं बैलेंस ठीक बना, गिरे भी नहीं तो पैर ही मुड़ गया ना। अब 5-7 दिन के लिए पैर में मोच आ गई, पड़े हुए हैं। तो ये अकस्मात जो घटनाएं होती हैं ये जाहिर करती हैं कि कहीं न कहीं इनके कारण सूत्र जो हैं वो ऐसे हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो चाहे उसे प्रारब्ध बोल देते हैं भगत लोग, उसे ईश्वर की इच्छा बोल देते हैं, ईश्वर को न मानने वाले लोग कह देते हैं बाई चांस ऐसा हो गया, एक्सीडेंट नाम ही उसका रख रखा बाई एक्सीडेंट। तो ये जो सुख दुख के हेतु हो रहे हैं, इन सुख दुख के हेतुओं को हम बंधन मानते हैं। अब एक दुख को हटाने के लिए उपाय करते हैं फिर दूसरा आ जाता है, दूसरे को हटाने के लिए उपाय करते हैं फिर तीसरा आ जाता है, और सुख भी आता रहता है लेकिन सुख तो ऐसा खत्म हो जाता है, अरे मालूम ही नहीं पड़ा। और दुख की एक मिनट भी एक घंटे से ज्यादा मालूम पड़ती। तो बस सारा जीवन इसी में बीतता है, दुख इधर से उधर, सुख इधर से उधर। तो कहते हैं दुख की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होती किसी भी उपाय से। आत्यंतिक माने हमेशा हमेशा के लिए निवृत्त हो जाए, तो बोले ऐसा हो ही नहीं सकता है। जिस दुख का कोई हेतु है वो उसकी हमेशा के लिए निवृत्ति हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि वो तो सीरीज सीक्वेंस चल रही है, एक दुख का कारण निवट जाएगा, दूसरे दुख का कारण उपस्थित हो जाएगा। महाराज श्री कहते हैं कि जैसे घड़ी वाटर प्रूफ होती है, फायर प्रूफ मकान बनाते हैं, ऐसे ही आप अपने आप को दुख प्रूफ बनाइए। दुख प्रूफ कैसे बने भाई? तो बोले आप चीज ही ऐसी हैं जो दुख प्रूफ है, बनाना नहीं है। बनाओगे तो बिगड़ोगे। एक चीज ऐसी है कि जो जिस पर सुख दुख कभी घुसता ही नहीं है, आनंद स्वरूप आत्मा उसको बोलते हैं। तो चित्त स्वरूप तो साक्षी की बात सिद्ध हो जाती है, हां मैं सच्चित स्वरूप साक्षी हूं। लेकिन कुछ मजा नहीं आता है। एक बात तो आनंद के लिए फिर मुझे कहीं और जाना पड़ेगा। एक सज्जन मिले तो बोले साहब एक समस्या है हमारी। क्या है कि दसियों बरस से हम वेदांत का सत्संग, माने वो अपने घर पर सत्संग भी करते हैं, उनके भगत भी हैं, दसियों बरस से हम वेदांत का सत्संग करते करा रहे हैं, लेकिन अब हमारी प्रवृत्ति जो है वो भक्ति में हो गई है। अब वो ठाकुर जी जो है उसको लिए लिए घूम रहे हैं, वो उसी को अपने साथ सुलाते हैं। तो कुछ तो कहते हैं कि हमारा पतन हो गया है, और हमको लगता है कि पतन नहीं हुआ है, ये तो ज्ञानोत्तरा भक्ति का प्रकाश हो रहा है। तो आप बताइए क्या। अब मैंने सोचा, मैंने कहा भाई किसी का दिल जो है इतना नहीं तोड़ना चाहिए। अब ये कह दो कि नहीं तुम्हारा पतन हो रहा है, बेचारे का दिल बैठ जाएगा। और ज्ञानोत्तरा भक्ति जो है हमारे वेदांत सिद्धांत में तो कुछ होती नहीं है। बाध्यतानुवृत्ति से तो भक्ति होती है, उसी को ज्ञानोत्तरा भक्ति बोलते हैं। तो मैंने कहा भाई देखो सुनो, हम तो गणित के आदमी हैं, तो ये बताओ दो और तीन कितने होते हैं कि पांच, और इनके तीन और दो कितने होते हैं कि पांच। तो मैंने कहा पहले आपने तीन किया, आप दो कर रहे हो, रिजल्ट तो पांच ही आना है ना। चाहे दो पहले कर लो, चाहे तीन पीछे कर लो, चाहे तीन पहले कर लो, दो पीछे कर लो। बोले हाँ ये बात आपका ठीक है, तो रिजल्ट तो पांच ही आएगा ना। मैंने कहा हाँ पांच ही आएगा। अरे भाई ये साक्षी जो है ये आनंद स्वरूप है, इसको सुख के लिए किसी की दरकार नहीं है, इसलिए कुछ दुख हटाने की इसको जरूरत नहीं है। आत्यंतिक निवृत्ति का मतलब ये नहीं है कि कोई ऐसा चूरा डाल देंगे हम कि फिर दुख आएगा ही नहीं। महात्माओं के जीवन में तो बहुत बड़े बड़े दुख आ जाते हैं, देखे ही जाते हैं। तो बोले क्यों आ गए? ऐसा नहीं है, ये सुख दुख तो शरीर में सहेतुक आते हैं, और वो हेतु समाप्त होने पर फिर खत्म हो जाता है, फिर नए हेतु आते हैं, फिर नए सुख दुख आते हैं। लेकिन ये साक्षी जो है ये सचित होने के साथ साथ आनंद स्वरूप है, ये बात समझना पड़ता है, तब दुख की आत्यंतिक निवृत्ति होती है। हम तो दुख में भी ऐसे ही हैं, सुख में भी ऐसे ही हैं। दुख को हटा के हम सुखी हो जाएं, ऐसा तो आदमी कभी हो ही नहीं सकता सुखी। यदि देहं पृथक्कृत्य चिति विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शान्तः बन्धमुक्तो भविष्यसि। यदि देहं पृथक्कृत्य, यदि देह को अलग करके, आत्मा को अलग करके नहीं, यदि देहं पृथक्कृत्य, यदि देह को अलग करके, किससे? आत्मा से नहीं, अपने मैं से। इस समय जो हमारा मैं है, उस मैं से देह को अलग कर दो, तो अलग करके कहां पर बैठे फिर? कि चिति विश्राम्य तिष्ठसी, उस चित स्वरूप आत्मा में बैठ गए। जो बैठ जाता है, यदि बैठ जाओ तो अधुनैव सुखी शांतः, तुम अभी अभी सुखी हो जाओगे। सुखी हो, अभी अभी का मतलब अभी अभी सुखी हो और शांत हो, इसलिए तुम्हें किसी समाधि की भी जरूरत नहीं है। बंध मुक्ता, कोई बंधन ही नहीं है नारायण, तो उसको काटने की क्या जरूरत है? बोले दुनिया में जब अपोजिट सेक्स नहीं रहेगी तब हम सुखी हो जाएंगे, तो ऐसा हो सकता है क्या? अरे सब जो का ये सारे सुख दुख की जो हमें विषय में सुख या दुख मालूम पड़ता है, इसका केंद्र तो हमारी बुद्धि में है, हमारे ज्ञान में है। यदि वो केंद्र वहां से खत्म हो गया तो दुनिया में कुछ भी हो नारायण। तो बंध मुक्तो भविष्य से, तू कह रहा ना मेरी मुक्ति कैसे होगी, तो ऐसे होगी। अब इसमें कितने ही विवेक हैं, एक तो हुए तुम, एक हुआ देह, जो देह से चिपक रहे हो इस समय, तो इसको तो हटाओ, देह को तो अपने से हटाओ। और एक हुआ साक्षी, इसको अपने आप को इधर लाओ, बजा देह के इधर लाओ, मैंने साक्षी, मैं साक्षी हूं ऐसा अपने को जानो। और साक्षी सच्चित तो है ही, उसका स्वरूप आनंद है। जैसे ही ये बोध होगा काम बन गया बस। लेकिन अभी एक चीज इसमें कमी है, वो क्या कमी है? कि मैं तो मुक्त हो गया लेकिन अब दुनिया को मुक्त करना है मुझको, लोक हित करना है, शिष्य बना बना के उनको जो है मुक्त करना। अरे मुक्त की नजर में सब मुक्त ही हैं। तो महाराज श्री कहते थे, जब जिज्ञासु सामने आके कहे कि महाराज मैं बंधन में हूं, मुझे मुक्त करो, तब महात्मा कहे ठीक है, जब तुमने बंधन का अभिमान धारण कर लिया तो अब हम मुक्ति का अभिमान धारण करके तुमको समझाते हैं। हमें क्या जरूरत है कि हम तुमसे ये कहें कि तुम बद्ध हो, हमारी दृष्टि में तो तुम मुक्ति ही हो। शेष चर्चा फिर हरि ओम।